नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं और विशेष करके उन भाई बहनों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम नए नियम की पुस्तक में से रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस रोम के विश्वासियों की सराहना करते हुए उनके पास जाने की लालसा प्रकट करता है कि वह उनमें आत्मा का फल पाए। आज हम देखेंगे पौलुस के तीन मैं, तीन आई। मेरे मित्रों, आप निकाल लीजिए रोमियो की पत्री एक अध्याय उसका 14 पद। रोमियो की पत्री एक अध्याय उसका 14 पद, यहां पर हम पढ़ते हैं, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं यूनानियों और अन्य भाषियों, मनुष्यों का यह विभाजन यूनानियों ने किया था। यूनानी परिष्कृत, शिक्षित और सभ्य माने जाते थे। अन्य भाषी वे थे जिन्हें आज हम अन्य जाति कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह विभाजन मर्यादापूर्ण नहीं था, परंतु यह सब मनुष्यों के लिए था और रोमी इसे ऐसा ही मानते थे। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का कर्जदार हूँ। वह उनका कर्जदार कैसे हुआ? क्या वह उनसे सामान खरीद कर पैसा देना भूल गया था? जी नहीं, वह उससे व्यापार नहीं कर रहा था। उसका मसीह के साथ व्यक्तिगत व्यवहार था जिसके कारण वह प्रत्येक मनुष्य का कर्जदार था, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बहुतायत से प्रकट हुआ था और पौलुस इस भटके हुए संसार का कर्जदार था। मित्रों, मैं विश्वासियों को कहते हुए सुनता हूँ, मैं ईमानदारी से ऋण चुका देता हूं। क्या आप वास्तव में ऐसा करते हैं? जब तक संसार में हर एक मनुष्य सुसमाचार नहीं सुन लेता, हमने अपना ऋण ईमानदारी से नहीं चुकाया है। मैंने अपने एक मित्र से सुना कि एक दिन वह तुर्किस्तान के भीतरी क्षेत्र में अपने मित्र के साथ यात्रा कर रहा था और तुर्किस्तान सुसमाचार के लिए बंद है। आप प्रचार करके वहां समस्या में पड़ सकते हैं। चलते चलते वे दोनों एक छोटे नगर के पास आए। वहां सब कुछ उनकी भाषा में ही लिखा था। तब उन्होंने वहां पर देखा एक सड़क की छोर पर कोको कोला, जो अंग्रेजी में लिखा था। उसने अपने मित्र से कहा कि 2010 वर्ष बीत गए, सुसमाचार प्रचार की तुलना में कोका कोला ने कुछ ही वर्षों में क्या अधिक प्रचार नहीं किया है। मेरे मित्रों, हमने अपना ऋण नहीं चुकाया है। असंख्य जनों ने सुसमाचार नहीं सुना है। हमने अपना ऋण अभी भी नहीं चुकाया है। पौलुस कहता है कि मैं कर्जदार हूं। यह भी एक कारण था कि वह रोम जाना चाहता था। हम आगे देखते हैं अब पौलुस का दूसरा मैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। पौलुस कहता है कि वह कर्जदार है। अब वह कहता है कि वह कर्ज चुकाने को तैयार है। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा है, मैं अपनी ओर से तैयार हूं। जेम्स स्टेफलर रोमियो की पत्री पर टीका करते हुए लिखते हैं, वह अपने उद्देश्य का स्वामी है परंतु परिस्थिति का नहीं। वह तैयार ही नहीं है, वह प्रचार करने के लिए उत्सुक है। ओह, हमें ऐसे जोश की कैसी आवश्यकता है, कैसी उच्च आशा होना है कि परमेश्वर का वचन प्रचार करें। मित्रों, अगले पद में पौलुस का तीसरा मैं है। पद 16 और 17 हमें रोमियो की पत्री की कुंजी प्रदान करते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं ला जाता हूं। मूल लेखों में मसीह के नहीं है। पौलुस कहता है, मैं कर्जदार हूं, मैं तैयार हूं, मैं लजाता नहीं हूं। मित्रों, यह कहता है मैं कर्जदार हूं, यह स्वीकारयुक्त है। मैं तैयार हूं, यह ऋण की छूट है। मैं लजाता नहीं, यह समर्पण है। ये पौलुस के 3 कार्य हैं, स्वीकारयुक्ति, ऋण की छूट और समर्पण। नाउ, अब पौलुस ने क्यों कहा कि वह सुसमाचार से लजाता नहीं? इफिसियस के रास्ते पर चलते हुए संगमरमर के मंदिरों के खंडहर को देखें तो स्मरण होगा कि पहले शताब्दी में वहां एक भी आराधनालय नहीं था। इफिसुस में प्राचीन संसार के 7 आश्चर्यों में से एक डायना अर्तिमिस का मंदिर था, परंतु आराधनालय नहीं था। मेरे विचार में रोम के कुछ विश्वासी कह रहे होंगे, भाई पौलुस रोम इसलिए आया कि वह गरीबों के लिए सुसमाचार लाया है। उसका संदेश सम्मान रहित है। उसके संदेश के संबंध में तो कोई भी मंदिर नहीं है। वह तो रोम जैसे महत्वपूर्ण नगर में प्रचार करते हुए लजाएगा। यही कारण है कि पौलुस ने कहा, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं हूं। मेरे प्रियो, पौलुस सुसमाचार से लजाता क्यों नहीं था? क्योंकि वह परमेश्वर का सामर्थ था। सामर्थ शब्द यूनानी शब्द यूनामिस का अनुवाद है, जिससे डायनामाइट अर्थात बम शब्द आया है। डॉक्टर मार्विन आर विंसेंट ने कहा कि यह दिव्य शक्ति है। सुसमाचार स्वयं में सामर्थ है, नैसर्गिक शक्ति है। उसमें हर एक विशेष बात की शक्ति है। यह उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। यह सुसमाचार की परिपूर्णता और प्रभाव है। उद्धार सुसमाचार का संपूर्ण समाहित शब्द है, जिसका साधारण अर्थ है मुक्ति। उसमें न्यायोचित होने से महिमान्वयन तक सब कुछ आ जाता है। यह कार्य एवं प्रक्रिया दोनों है। मेरा उद्धार हो गया, मेरा उद्धार हो रहा है और मेरा उद्धार होगा, समतुल्य सच्चाइयां है। मेरे मित्रों, सुसमाचार सबके लिए है, पहले यहूदी फिर यूनानी। इसमें संपूर्ण मानव जाति आती है। इसमें जाति और धर्म की सीमाएं नहीं है। यह वैयक्तिक है और प्रत्येक मनुष्य के लिए है, जो चाहे इसे सुन सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है। इसका परिदृश्य वैश्विक है, परंतु यह प्रत्येक विश्वास करने वाले तक सीमित है। यह वाक्य स्वतंत्र इच्छा और चुनाव को एक साथ जोड़ देता है। उद्धार पाने की एकमात्र विधि है व्यक्तिगत विश्वास। मेरे प्रियो, पहले यहूदी फिर यूनानी का अर्थ यह नहीं कि आज सुसमाचार के लिए यहूदी को उच्च प्राथमिकता प्राप्त है, परंतु यह कि सुसमाचार प्रचार में यहूदी और अन्य जाति एक ही स्तर पर हैं। कालक्रम के अनुसार तो निस्संदेह सुसमाचार पहले यहूदियों में पहुंचा। यदि आप पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम में होते तो आप एक पूर्ण यहूदी सभा देखते। पौलुस भी प्रचार यात्राओं में पहले यहूदी आराधनालयों में ही प्रचार करता था, परंतु प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है, तब पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। जी हाँ, सुसमाचार यरूशलेम एक यहूदी नगर से आरंभ हुआ था, उसके बाद यहूदा, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक पहुंचा, और इसमें भी सबको सुसमाचार सुनाया गया, और जिन्होंने सुना, ग्रहण किया, उन्हें यह विश्वास का आदर मिला। डॉक्टर स्टिफलर इस पद में 3 महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, सुसमाचार का प्रभाव। उद्धार। दूसरा, विस्तार वैश्विक प्रत्येक मनुष्य। तीसरा, परिदृश्य मसीह यीशु में विश्वास। अब हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, यह शाब्दिक अनुवाद है। इसे परमेश्वर की धार्मिकता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यह परमेश्वर का गुण प्रकट होती है, और परमेश्वर अपना गुण किसी में नहीं बांटता है। यह धार्मिकता है और परमेश्वर की ओर से है, यह मनुष्य की धार्मिकता नहीं है। यशाया नबी की पुस्तक 64 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है कि मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। पौलुस मसीह की रोपित धार्मिकता के बारे में कह रहा है, परमेश्वर एक भ्रष्ट पापी को मसीह में अवस्थित कर देता है और उसे मसीह में देखता है। विश्वासी के लिए मसीह ने जो किया उसके कारण वह पूर्ण रूप से स्वीकार्य हो जाता है। इस धार्मिकता को प्राप्त करने की एकमात्र विधि है विश्वास। यह विश्वास द्वारा धार्मिकता है। आप इसके लिए कार्य नहीं कर सकते हैं और न ही इसका निवेश कर सकते हैं। आप इसका अर्जन नहीं कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल विश्वास द्वारा इसे ग्रहण कर सकते हैं। फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, और उसमें पाया जाऊं न कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। धार्मिकता का यूनानी शब्द है दिकायो सुने। यह शब्द नए नियम में 92 बार आया है और रोमियो की पत्री में 36 बार आया है। परमेश्वर की धार्मिकता इस पत्री में 8 बार आया है। इसके मूल शब्द डीके का अर्थ है उचित, न्याय एवं न्याय करना इसी मूल शब्द से आए हैं। न्यायोचित होना इसका मूल अर्थ है, जो पाप का विलोम शब्द है। डॉक्टर क्रेमर यह उचित परिभाषा देता है, यह वह दशा है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है और परमेश्वर के न्याय की परख सहन करती है। मनुष्य का चरित्र और कार्य उसके द्वारा स्वीकृत, जिसके सदाचार में मनुष्य उसके साथ और उसकी इच्छा, उसके व्यवहार और मानदंड के साथ समायोजन बनाता है। मेरे प्रियो, जिस धार्मिकता की वह बात कर रहा है वही परमेश्वर चाहता है और उसे उपलब्ध भी करवाता है। यह वह धार्मिकता है जो परमेश्वर से मिलती है। विश्वास से और विश्वास के लिए, अर्थात विश्वास के द्वारा विश्वास में परमेश्वर आपके विश्वास के कारण आपका उद्धार करता है। आप विश्वास में जीवित रहते हैं और विश्वास में मरते हैं और विश्वास से ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मित्रों, मैं यहाँ पर आपको एक पारिवारिक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक मित्र ने बताया कि जब वह पैदा हुआ तब उसकी माता ने उसे बताया कि डॉक्टर ने उसके पांव से पकड़कर उसे उठाया और पीछे से एक थप्पड़ मारा। परिणाम स्वरूप वह रोने लगा, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वह वातावरण के संसार में पैदा हुआ था और डॉक्टर के थप्पड़ से उसकी सांसें चलने लगी। उस दिन से आज तक वह वातावरण की वायु ले रहा है। मेरे मित्रों, हवा से हवा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, बहुत समय बाद दूसरा जन्म भी हुआ है। उस समय से आज तक मैं विश्वास करता हूं कि यह विश्वास ही है जो लोगों को जीवित रखता है। जैसा लिखा है हबक्कूक की पुस्तक 2:4 के संदर्भ में, वहां लिखा है धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जी हाँ, यह संदर्भ नए नियम की 3 महान पत्रियों में दिया गया है, रोमियों की पत्री, गलातियों की पत्री और इब्रानियों की पत्री। मेरे मित्रों, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास के द्वारा धर्मी होने का अर्थ है एक पापी जो मसीह में विश्वास करता है वह मसीह की मृत्यु के कारण पाप से क्षमा नहीं पाता, वरन परमेश्वर के समक्ष मसीह में परिपूर्ण होकर खड़ा होता है। यह पाप का घटाया जाना ही नहीं, धार्मिकता का जोड़ा जाना भी है। रोमियो की पत्री 4:25 में लिखा है वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया, जिससे कि हम परमेश्वर के समक्ष परिपूर्णता में खड़े हों। मेरे प्रियो, विश्वास द्वारा हमारा धर्मी ठहराया जाने का परमेश्वर का यह एक निरंकुश निर्णय नहीं था। वह अपनी पवित्रता और न्याय का अपमान नहीं करता है। परमेश्वर अनुग्रह द्वारा हमारा उद्धार करता है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम में कोई योग्यता नहीं है। वह यीशु में विश्वास के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर उद्धार नहीं करता। यदि दंड ना चुकाया जाए तो परमेश्वर अपने ही न्याय से चुकने के संकट में है। वह स्वर्ग का पिछला द्वार खोलकर रात के अंधेरे में पापियों को स्वर्ग में नहीं लेता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। इसलिए मसीह मरा कि आपके लिए मार्ग तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का मार्ग है, क्योंकि मसीह ने हमारे पापों का दंड उठाया है, इसलिए उद्धार हमारा है। रोमियो के पत्री 3:25 में पौलुस कहता है, एक गीतकार ने लिखा है, यीशु ने सब चुकाया, मैं उसी का ऋणी हूं। पाप ने लाल चिन्ह छोड़ा था, उसने बर्फ की नाय श्वेत धो दिया। मेरे प्रियो, इसके साथ ही पौलुस की प्रस्तावना समाप्त होती है। अब वह एक नया भाग आरंभ करता है जिसमें मनुष्य के पाप का अनावरण है। मेरे प्रियो, सार्वभौमिक सत्य यह है कि मनुष्य पापी है। कलीसियाई एकता का अभियान सदा ही परमेश्वर से दूर है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य परमेश्वर के समक्ष अपराधी है। सबको धार्मिकता की आवश्यकता है। इस भाग में पौलुस मनुष्य को पापी सिद्ध नहीं कर रहा है। यदि आप इसे इस समझ से पढ़ेंगे तो आप इसके उद्देश्य से चूक जाएंगे। पौलुस केवल यह कह रहा है कि मनुष्य पापी है। वह केवल यह नहीं कहता कि परमेश्वर की धार्मिकता प्रदर्शित होती है, परंतु मनुष्य के पाप के लिए परमेश्वर दंड भी देता है। हम देखते हैं परमेश्वर का प्राकृतिक प्रगटीकरण। रोमियो की पत्री 1:18 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मित्रों, ध्यान दीजिए, परमेश्वर का क्रोध। सच तो यह है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि उद्धार वास्तव में क्या है तो आपको यह जानना आवश्यक है कि पाप कितना बुरा है। स्टेपलर कहते हैं पाप उद्धार का परिमाप है। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर की भावना है, पाप के लिए उसका दंड नहीं, यह उसका पवित्र क्रोध है। क्रोध उद्धार की प्रतिकूलता है। यहाँ पर इसे सहसंबंधित शब्द स्वरूप काम में लिया गया है। मित्रों, हम देखते हैं प्रकट होता है, यह उनके लिए परमेश्वर का उत्तर है जो कहते हैं कि पुराना नियम क्रोधी परमेश्वर को प्रकट करता है, जबकि नया नियम प्रेम के परमेश्वर को प्रकट करता है। पुराने नियम और नए नियम दोनों में ही परमेश्वर के क्रोध का लगातार प्रदर्शन है। यह हमारे वर्तमान समाज में प्रकट है। यह पाप के प्रति परमेश्वर की लगातार और बलपूर्वक प्रकट अप्रसन्नता है। वह बदलता नहीं। परमेश्वर दयालु है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह पाप के प्रति नर्म स्वभाव रखता है, परंतु इसलिए कि मसीह मर गया। सुसमाचार में पाप के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण बदला नहीं है। सुसमाचार ने केवल पापी का ग्रहण किया जाना संभव बनाया है। मेरे प्रियो, पापी को या तो धार्मिकता स्वीकार करना है या परमेश्वर का क्रोध, दोनों ही स्वर्ग से प्रकट होते हैं। इसे आप हर जगह देख सकते हैं। आप यदि पाप की भयानक दशा देखना चाहते हैं तो आज यौन रोग के रोगियों को देखें। मेरे मित्रों, आप पाप करके बच नहीं सकते हैं। मैं व्यक्तिगत उदाहरण नहीं दे सकता, परंतु मैंने काफी समय सेवा दी है और पाप पर परमेश्वर के दंड को बार बार देखा है। यह स्वर्ग से प्रकट होता है। अंतिम न्याय भी होगा जो सबको देखना और सामना करना पड़ेगा। सब अभक्ति अर्थात परमेश्वर विरोधी स्वभाव, परमेश्वर के स्वभाव का इनकार करना। ओह, आज कैसी धर्महीनता है। असंख्य मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करते हैं। यह जीव आत्मा की दशा है। पाप पाप है। मेरे मित्रों, अधार्मिकता मनुष्य विरोधी है, जबकि अभक्ति परमेश्वर विरोधी है। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के प्रशासन का इनकार। यह जीवात्मा का कार्य है। एक शराबी गाड़ी चलाते हुए नियमों को तोड़ता है और किसी को दुर्घटना में मार देता है। वह मनुष्य के प्रति पाप करता है। दूसरा उदाहरण, व्यापार में बेईमान मनुष्य। परमेश्वर मनुष्य की अधार्मिकता से घृणा करता है। वह उसका उसे दंड देगा। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, अर्थात अधर्म के कारण सत्य को उभरने नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे मनुष्यों पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। हम रोमियो की पत्री 1:19 में पढ़ते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का मूल प्रगटीकरण हो चुका है। हम रोमियो की पत्री 1:20 में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हमारा संसार परमेश्वर के विषय में दो बातें बताता है, उसका व्यक्तित्व और उसका सामर्थ्य। यह जगत की रचना से ही देखे जा रहे हैं। अदृश्य वस्तुएं कैसी देखी जा सकती हैं? पौलुस जानबूझकर यह विरोधाभासी बात करता है कि उसके पाठक प्रकृति की मंद ज्योति से प्रभावित हों, जो मनुष्य द्वारा रचित झूठ है। मेरे प्रियो, सृष्टि प्रगटीकरण की स्पष्ट ज्योति है। यह प्राथमिक प्रगटीकरण है, जिसे हम भजन संहिता 8:3 में भी देखते हैं। लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागणों को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं। और तब हम आगे देखते हैं भजन 19:1 में, वह कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जी हाँ, सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, उसका अनंत सामर्थ्य और उसका ईश्वरत्व, सामर्थ्य और व्यक्तित्व। सृष्टि परमेश्वर के अपरिवर्तनीय सामर्थ्य और अस्तित्व को प्रकट करती है। प्रेरितों के काम 14:17 में पौलुस कहता है, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा, क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। पुत्र नहीं, इसलिए पौलुस ने कहा प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 29 पद में, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व तो सोने या रूपे या पत्थर के समान है जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। डॉक्टर जेम्स डेनी ने लिखा है, मनुष्य में वह है जो बाहरी सब बातों का अर्थ अंतर्ग्रहण करता है कि परमेश्वर का सहज वृत्ति से ज्ञान ग्रहण करे। मेरे प्रियो, मेरे विचार में मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है नास्तिकतावाद, वह तर्कहीन और मूर्खता है। भजन संहिता 14 उसके 1 पद में लिखा है, मूर्ख ने मन में कहा परमेश्वर नहीं है। जी हाँ, यहाँ मूर्ख से अर्थ है जिसका मानसिक संतुलन ठीक न हो। जब मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तब वह कहता है कि परमेश्वर नहीं है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। प्रकृति परमेश्वर को ऐसा प्रकट करती है कि मनुष्य के पास इनकार करने का बहाना ही नहीं रह जाता है। यह भाग मनुष्य के पाप का ऐतिहासिक आधार प्रकट करता है। पाप अज्ञान के कारण नहीं आया है, पाप ज्योति में स्वेच्छा से विद्रोह है। मेरे मित्रों, बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन जब हम उसकी सृष्टि की ओर निहारते हैं तो इससे पता चलता है कि कोई तो है जिसने इसे रचा है। जिस प्रकार हम घड़ी बनाते हैं और पहनते हैं और इस बात को जानते हैं कि कोई एक कंपनी है जो इस घड़ी को बनाती है, उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे, आपको और इस संसार को बनाया है। इससे हम झूठला नहीं सकते हैं। आज मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर के निकटता में होना है। अगर हम पाप करते हैं तो उसके लिए हमें क्षमा की आवश्यकता है। धार्मिकता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा मिलता है। मेरे मित्रों, आइए आज हम अपने आप को परमेश्वर को अर्पित करें और कहें, प्रभु मैं आपकी ज्योति की बातों को और अधिक समझना चाहती हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे आप सिखाएं। जी हाँ, जब आप मांग करेंगे तो निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सब परमेश्वर की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा तुझे कुछ ना दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास घुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।